मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे आज क्या बात करूंगा, किस विषय पर, ये अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं। पहले जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं, और यदि इसके बाद वक्त ने अनुमति दी तो फिर उस समय हम लोग मुख्य विषय के रूप में किसी अन्य पर बात करेंगे। अन्यथा आप यही मान करके चलें कि आज की जो मुख्य खबरें हैं यही आज के मुख्य विषय भी। अगर आपने रेडियो न्यूज सुनी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर सुनी होगी, तो उसमें चीता परियोजना के बारे में बताया गया है। चीता परियोजना न्यूज में बहुत थोड़ी सी ही बात कही गई, और यह कहा गया कि विलुप्त प्राय प्रजातियों की पुनर्स्थापना के लिए, खासकर अब हमारे यहां जो चीता है वो एक तरीके से विलुप्त प्राय प्रजातियों में आ गया है, तो इसके पुनर्स्थापन के लिए, उनके संरक्षण के लिए मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत सरकार चीता परियोजना तैयार करेगी। और ये जो काम होगा हमारा, एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आपको अलग से पूरी जानकारी रखनी ही चाहिए, और मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस पर बात की है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि हम जो चीता परियोजना पर काम करेंगे वो पूरी तरह से IUCN के जो दिशा निर्देश है उन दिशा निर्देशों के अनुकूल करेंगे। थोड़ी सी जानकारी अब मैं आपको चीता के बारे में देना चाहूंगा, खासकर अब जो प्री एग्जामिनेशन है, कौन है प्राणी की बात मैं करा, जिसमें आप व्यक्ति को भी शामिल कर लीजिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वह चीता है, सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता, जिसकी जो स्पीड है वो लगभग एक घंटे में 95 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, और जब वो स्पीड से दौड़ रहा होगा तो 7 मीटर लंबी छलांग वो लगा सकता है। ये जो चीता शब्द है, अंग्रेजी में भी चीता ही है, ये संस्कृत के चित्रकाय शब्द से आया। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए। चित्रकाय, चित्र मतलब आप जानते हैं चित्र, फिगर, और काय का मतलब शरीर, चित्र का मतलब जानते हैं आप, है ना, कि चित्रकला है, तस्वीर कह सकते हैं। तो एक ऐसा शरीर, एक ऐसी काया जो चित्रित है, बहुरंगी है, कह लीजिए रंग बिरंगी है, तो चीता इसी तरह का होता है। तो चित्रकाय ही आगे चल करके चीता शब्द में तब्दील हुआ। इसके पीछे की बैकग्राउंड थोड़ी सी यह है कि हम चीता के लिए पहले से कोशिश कर रहे थे, लेकिन खासकर अफ्रीकी चीताओं के लिए, लेकिन 2013 में, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हम अफ्रीका से चीता मंगाना चाह रहे थे, इंपोर्ट करना चाह रहे थे, 2013 में इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन 2020 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वह प्रतिबंध हटा लिया, यानी कि 2020 से हम फिर से स्वतंत्र हो गए कि अब हम वहां से चीता मंगा सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो चंबल संभाग है उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान को खासकर चीता के लिए सबसे आदर्शतम स्थल माना जाता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और आगे अगर इस पर कुछ और बातें हुई तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन खासकर आपको चाहिए कि आप इसे अभी अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में शामिल कर लें। दोस्तों, एक खबर आपने खासकर दूरदर्शन न्यूज में और आज के अखबारों में भी पढ़ी होगी, रोहिंग्याओं को लेकर। रोहिंग्या, बेसिकली रोहिंग्या म्यांमार में रहने वाले मुस्लिम हैं, वहां खासकर आरोप लगाते हैं ये कि उन पर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किए जाते हैं, तो वो वहां से पलायन करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार मैप उठाएं और उसमें म्यांमार की लोकेशन देखें कि वो कहां है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप चले जाएं तो उधर आपको म्यांमार दिख जाएगा, आपको मालूम भी होना चाहिए। तो ये जो रोहिंग्या लोग हैं ये वहां से पलायन करके बांग्लादेश होते हुए ये भारत में भी जाते हैं, बांग्लादेश में भी जाते हैं और फिर भारत में प्रवेश कर जाते हैं। जब भारत में ये प्रवेश करते हैं तो फिर किसी भी तरीके से पता लगा कि इन्होंने और दूसरी व्यवस्थाएं कर ली और मतदान सूची में भी अपना नाम शामिल कर लिया और बकायदे पहचान पत्र भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि ये देखा गया है कि वहाँ के जो बॉर्डर एरिया हैं, वहाँ की जो जनसांख्यिकी का जो चरित्र है वो तेजी से बदल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए कि जब कोई भी शरणार्थी जब इस तरह से आएंगे और राष्ट्र में घुल मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी जनसांख्यिकी के चरित्र को तो दुष्प्रभावित करता ही है, साथ में वो हमारी सुरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती पैदा करता है। तो इसे एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा है और जाना भी चाहिए। तो जो आपके सिक्योरिटी का जो पॉइंट है, नेशनल सिक्योरिटी का, उसमें आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको लेकर के अभी विवाद हुआ, विवाद आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि ये कहा गया कि नहीं नहीं, मतलब पहले जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम रोहिंग्या शरणार्थी को यहाँ पुनः मतलब बसाएंगे, बाद में उन्होंने मना किया क्योंकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हमारा कोई भी पर्पज नहीं है कि हम रोहिंग्या शरणार्थी को यहाँ स्थायी आवास देंगे, तो जहाँ वो लोग रह रहे हैं उसको अभी बकायदे डिटेंशन सेंटर घोषित कर दिया जाए, यानी कि उन्हें अभी वहाँ रोक करके रखा गया है। और डेफिनेटली देखिए, कोई भी देश हो, इस तरह की घुसपैठ को तो स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे ध्यान आ रहा है कि तो 3-1 साल पहले यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी थी, उस समय प्री एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन आया भी था। दोस्तों, एक खबर और, अगर आपने प्राइवेट चैनल देखा हो तो ये प्राइवेट चैनल पर खबर थी, आज के अखबारों में भी है, वो बिल्किस बानो के मामले को लेकर है। बिल्किस बानो का जो मामला है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक मामला है, जिनके साथ गैंग रेप हुआ था और उसके तहत 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और कल या परसों की बात है कि अब उन्हें छोड़ दिया गया है, एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कानून ये कहता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो जेल में बंद कैदी हैं उनके मामलों पर विचार करके और बकायदे उन्हें माफी दे सकती है, तो उसी के तहत गुजरात सरकार ने ऐसा किया और उन्हें छोड़ने की बात कही गई। इसको लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। दरअसल होना क्या चाहिए, ये सही है कितना गलत है, ये एक बहुत ही डिबेट का मामला होता है और आपकी जानकारी में भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेट भी है, रेप का केस भी है मतलब महिलाओं से जुड़ा हुआ अपराध है, और साथ ही साथ न्याय व्यवस्था भी है। इसको लेकर के बकायदे अखबारों ने एडिटोरियल कमेंट्स किए हैं और मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और मैं इसका हिंदी वर्जन भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। इसमें 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहली जो बात है वो ये है कि बकायदे कोर्ट ने यह कहा था कि जब राज्य इस तरह के किसी मामले पर विचार करे कि किसी को छूट दी जानी है अपराध में, तो उसे यह देखना चाहिए कि यह जो अपराध है वो इंडिविजुअल मामला है या फिर ग्रुप में किया गया मामला है, और यह जो मामला है यह समाज को किस तरीके से प्रभावित करता है। दूसरी बात जो खासकर जो हमारा हमारी होम मिनिस्ट्री है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, उसने भी जो गाइडलाइंस दी थी इसके बारे में राज्यों को, उसमें बकायदे साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर कोई जो अपराधी है वो रैपिस्ट है तो उसे इस तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत प्रोमिनेंटली रेज किए हैं, तो आप इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मैं आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये खासकर चावल के उत्पादन को लेकर है। इस बार जिस तरह से मानसून की वर्षा हो रही है तो जो चावल का जो रकबा है खेती का वो इस बार कम हुआ है, उसको लेकर के कुछ लोग चिंतित भी हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि स्टॉक काफी है तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं जो प्री में आपकी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी जैसे देखिए, यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान भारत ने चावल का निर्यात किया, 2.1 करोड़ टन चावल का निर्यात किया पिछले साल पूरा, और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब दुनिया में अनाज की कमी हो रही थी उस समय भारत ने यह किया, और 2.1 करोड़ टन के पिछले साल के चावल का जो निर्यात है वो वैश्विक कारोबार का 40% के बराबर है, जो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की कुछ बातें इस एडिटोरियल कमेंट में रखी गई हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ें और जो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन्हें केवल पॉइंट पॉइंट करके आप नोट कर लें, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। जो एक और एडिटोरियल कमेंट मैं आपको दे रहा हूं वो दैनिक भास्कर का है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट है। अगर हम मेंस के पेपर उठा करके देखें तो कोई भी साल ऐसा नहीं है, अगर आप जनरल स्टडीज के चारों पेपर्स को मिला दें, कि तीन क्वेश्चन, मैं मिनिमम कह रहा हूं, तीन क्वेश्चन विमेन एम्पावरमेंट पर न आए हों, या एम्पावरमेंट शब्द को हटा दीजिए तो विमेन पर न आए हों। तीन क्वेश्चन, और ये कम बड़ी बात नहीं है। ये खासकर जो एडिटोरियल कमेंट है स्पेशली जेंडर गैप के बारे में बात करता है। जो ग्लोबल जेंडर गैप है, जो वैश्विक लिंग भेद सूचकांक है, उसमें हम कहां हैं, और उसे इसने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जो वैश्विक लिंग भेद सूचकांक तैयार किया जाता है उसके चार पैरामीटर्स होते हैं, इसमें दिया हुआ है। स्वास्थ्य एवं जीविता एक पैरामीटर है जिसमें भारत की स्थिति निम्नतम है, मतलब हमारे यहाँ की महिलाओं का जो स्वास्थ्य है और जो खासकर आयु है वो आप कह लीजिए कि दुनिया में सबसे कम है, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं इसमें हम सबसे बुरी स्थिति में हैं। लेकिन जहां तक राजनीतिक सशक्तिकरण की बात है तो हमारी स्थिति ठीक है, लगभग लगभग हम 48th पोजीशन पर हैं। लेकिन जब हम आर्थिक भागीदारी और अपॉर्चुनिटी वाले पैमाने पर आते हैं तो फिर हम एकदम 143वें स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो 146 में 143वां अगर है तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी बुरी स्थिति में हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें इस तरह की जो बातें दी गई हैं और कुछ बहुत अच्छे आंकड़े दिए गए हैं जो लेटेस्ट है वो आपको नोट कर लेने चाहिए। इस बार के मेंस की दृष्टि से उत्तर जब आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे ही आज का मुख्य विषय समझ लें, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि मैं किसी अन्य दूसरे विषय पर बात कर सकूं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से तीन मित्रों के नाम हैं, अनंत चौहान, श्रुति अग्रवाल बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और अंजू यादव। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।